नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
पापों से धोकर तूने मुझे मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। पापों से धोकर तूने मुझे मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। आकर तेरे द्वार पे तेरा ही दीदार करूं, तू मुझको पुकार ले, तेरे लिए मैं हरदम रहूं, तेरा घर है मेरा मन, मेरे मन में है तेरा वचन, तेरा घर है मेरा मन, मेरे मन में है तेरा वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने परिवार के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को आप सुनते हैं और पत्र के माध्यम से अपनी गवाहियों को, अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं। प्रिय मित्र, इसी प्रकार से आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करते रहें और अपने मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दें ताकि प्रत्येक जन परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सके। आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, तो आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि वे जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन हर एक के हृदय में कार्य करने पाए। जो भाई बहन बीमार और निराश हैं, परेशान और चिंतित हैं, तनाव में हैं, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें। आज के वचन के द्वारा हम सब से आप बोले और बातचीत करें। पवित्र आत्मा, आप हम सब की सहायता करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। इब्रानियों की पत्री का लेखक प्रभु यीशु की तुलना इसराइल के याजकों से करते हुए कहता है कि इसराइल के याजक पाप मोचन के कार्य को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें बार बार पवित्र स्थान में जाना पड़ता था। परंतु प्रभु यीशु ने एक ही बार बलि चढ़ाई और पाप मोचन का कार्य संपन्न करके पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है। वह वहां से बाहर निकला, वह आज भी वहां हमारे लिए उपस्थित है। मेरे मित्रों, हम आइए पढ़ें इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 14 पद को। यहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यदि पशुओं का लहू और कलोर की राख मनुष्य की अशुद्धता को दूर करते हैं, तो निश्चय ही प्रभु यीशु का लहू पाप के दोष से मुक्त करा सकता है। यदि पशुओं का लहू पर्याप्त था, तो प्रभु यीशु अपना लहू क्यों बहाता? लिखा है, तुम्हारे विवेक को क्यों ना शुद्ध करेगा। मेरे मित्रों, यह लाल कलोर विश्वासी के जीवन का प्रतीक है और हम विश्वासियों को शोधन की लगातार आवश्यकता होती है। पहला यूहन्ना की पत्री 1:7-9 पद में लिखा है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अतः प्रभु यीशु का लहू देह को नहीं विवेक को शुद्ध करता है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं कि मनुष्य के विवेक को शोधन की आवश्यकता है। हम जब तक प्रभु यीशु के इस महान बलिदान में प्रवेश करके हमें पापों से शुद्ध करने और पापों की क्षमा के उसके परमाधिकार को नहीं पहचानते हैं, तब तक हम पूरी तरह प्रवेश नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन विवेक को सचेत करता है और विवेक परिपूर्ण उद्धार में विश्राम पाता है। हम निश्चिंत होकर सो सकते हैं कि हमारे पाप पूर्ण रूप से पूरे के पूरे क्षमा किए गए हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के साथ उचित होने का विश्वास रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने परमेश्वर के साथ हमारा मेल करवाया है। एक छोटे बालक से भूल हो गई तो उसने अपने पिता से क्षमा मांगी, पिता ने उसे क्षमा कर दिया। वह फिर क्षमा मांगने के लिए आया तो पिता ने कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। वह थोड़ी थोड़ी देर में आता और पिता से क्षमा मांगता। अंत में पिता ने कुपित होकर कहा, मैंने कहा ना कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब तुम फिर क्षमा मांगोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार कुछ विश्वासी बार बार परमेश्वर से उद्धार मांगते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मेरे पुत्र में विश्वास करो तो पापों की क्षमा पाओगे। लिखा है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। ध्यान दीजिए, मरे हुए काम अर्थात उद्धार के लिए किए गए प्रयास। हम पापों और अपराधों में मर चुके हैं, इसलिए हमारे काम भी मरे हुए हैं। उधार कमाने के काम मरे हुए होते हैं। अच्छे काम उधार का कारण नहीं, परिणाम है। लेखक कहता है कि तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यहाँ सेवा का मूल अर्थ है उपासना। आप परमेश्वर की उपासना किए बिना उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं। मैं एक पवित्र जन को आलस्य में देखता हूँ तो उसके उद्धार नहीं है, उसकी उपासना पर संदेह करता हूँ। यदि आप स्तुति और सराहना में लीन हो जाएं, तो निश्चय ही उसके लिए आप कुछ करेंगे। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। यहाँ उसके नई वाचा के मध्यस्थ होने पर बल दिया जा रहा है। पुरानी वाचा अर्थात पुराने नियम के भक्त जनों के उद्धार का कारण उसके आने की बाट जोहना था, और उसके आगमन की आशा में ही वे बलिदान चढ़ाते थे। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि वे इस भेद को कितना समझते थे, परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 56 पद में प्रभु यीशु ने उनसे कहा था, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। उत्पत्ति की पुस्तक में तो उसका उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु यीशु कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि पुराने नियम के युग में सब महानुभाव प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा में थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर उनकी विश्वास योग्यता पर उनका उद्धार करता था, बैल और बकरों के लहू से उनका पाप मोचन नहीं हो सकता था। वे एक विश्वास के आधार पर बलिदान चढ़ाते थे, और जब प्रभु यीशु आया तो उसने स्वयं ही अपने आप को बलि चढ़ा दी। रोमियों की पत्री के अध्याय 3:25 पद में पौलुस कहता है, जो पाप पहले किए गए थे और परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभु यीशु आदम से क्रूस के समय तक सबके पापों के लिए मर गया, और तब से ही हम भी विश्वास करके उसके पास आते हैं, और उस पर विश्वास के द्वारा हम सब उद्धार को प्राप्त करते हैं, न कि हमारे अच्छे और भले कर्मों के द्वारा। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 16-17 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। मेरे प्रियो, यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जब तक वसीयत लिखने वाला जीवित है तब तक वसीयत किसी काम की नहीं है, वह मृत्यु के बाद ही कार्यकारी होती है। प्रभु यीशु जीवित रहते हुए किसी को उद्धार नहीं दिला सकता था। मेरे प्रियो, आप मुझे गलत ना समझें, मेरे कहने का अर्थ है कि प्रभु यीशु के जीवन से बढ़कर उसकी मृत्यु उद्धार का कारण है। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 18-22 पद में लिखा है, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया, और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है की व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मेरे मित्रों, इन पांच पदों में लहू शब्द 6 बार आया है, जो पुराने नियम के विधि विधान में लहू के महत्व को दर्शाता है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, यह पुराने नियम की कहावत है। भजन का लेखक कहता है कि मेमने के लहू में सामर्थ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि मेमने के लहू से जय प्राप्त की गई है। किसी व्यक्ति विशेष की एक निष्ठा या शारीरिक बल या आत्मिक शक्ति के द्वारा नहीं, परंतु यह मेमने के लहू के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं। इब्रानियों के पत्र 9:23 में लिखा है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। मेरे मित्रों, स्वर्गिक वस्तुओं के शोधन की भी आवश्यकता है, क्योंकि पाप का आरंभ वहीं हुआ था। पद 11 में देखें, बैल और बकरों का लहू स्वर्ग में नहीं बहाया गया, परंतु हम यह मानते हैं कि प्रभु यीशु का लहू स्वर्ग में है। इब्रानियों के पत्र 9:24 में लिखा है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। मेरे मित्रों, पार्थिव तंबू तो मात्र एक प्रतीक था, वास्तविकता तो स्वर्ग में है। लिखा है, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे, अर्थात परमेश्वर की आंखों के सामने। प्रभु यीशु जिस पवित्र स्थान में है, वह मनुष्यों द्वारा बनाया नहीं गया है, यद्यपि वह अलौकिक है, यथार्थ में है। वह हमारे उद्धार के निमित्त इस पृथ्वी पर मरा, परंतु हमें उद्धार की अवस्था में रखने के लिए प्रभु यीशु स्वर्ग में जीवित है, वह हमारे लिए वहां है। इब्रानियों के पत्र 9:25 उसके 25 में हम पढ़ते हैं, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। मेरे मित्रों, यहां पर फिर से ध्यान दीजिए, महायाजक पार्थिव तंबू में लहू लेकर तो जाता था, परंतु वह उसका अपना लहू नहीं होता था, वह मेमने का लहू उससे प्रतिवर्ष वहां लेकर के जाना होता था। इब्रानियों की पत्री 9:26 उसके 26 में हम आगे पढ़ते हैं, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। लिखा है, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं संसार के अंत में। बाइबल संसार के अंत की चर्चा कहीं नहीं करती है, वह युग के अंत की चर्चा करती है। लिखा है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु इस संसार में व्यवस्था के अधीन हुआ और व्यवस्था के युग के अंत में प्रकट हुआ। उसने एक नए युग का आरंभ किया, जो अनुग्रह का युग है। इब्रानियों के पत्र 9:27 में हम पढ़ते हैं, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मृत्यु मनुष्य के जीवन चक्र की घटनाओं का अंत है। उद्धार से रहित मनुष्य के लिए मरणोपरांत केवल न्याय ही है। यदि प्रभु यीशु की मृत्यु द्वारा आपका उद्धार नहीं हुआ है, तो आपके भविष्य में न्याय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मित्रों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार कलीसियाओं में लोग मरे हुए व्यक्ति के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और तब न्याय का होना निश्चय है। आपकी प्रार्थना काम नहीं आएगी। आपको चाहिए कि उसके परिवार के लोगों के लिए आप प्रार्थना करें, ना कि उस व्यक्ति के लिए जो मर गया। हम कई बार ऐसी गलती करते हैं। मेरे मित्रों, मृत्यु सबकी नियति नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। निश्चय ही मनुष्य के लिए एक बार मरना अवश्य है, परंतु कुछ लोग मरेंगे नहीं। मैं कुछ लोगों को वृद्धावस्था के बारे में शिकायत करते हुए सुनता हूँ। ओह, वे मरकर प्रभु की उपस्थिति में चले जाना चाहते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मुझे प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे मरने की शीघ्रता भी नहीं है। मुझे आशा है कि उसके आगमन तक जीऊं, परंतु जानता नहीं कि यह संभव है या नहीं। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यह कलीसिया को उठाने के लिए प्रभु के आगमन के संदर्भ में नहीं है। यह उसका वह आगमन है जब वह पृथ्वी पर न्याय करने के लिए आएगा। विश्वासी न्याय के लिए नहीं रहेंगे। उसका फिर से आना पाप मोचन के लिए नहीं होगा। वह गलील सागर के आसपास या यरूशलेम की सड़कों पर विचरण नहीं करेगा कि देखें मनुष्य उसके उद्धार के प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखाता है। वह न्याय करने के लिए आएगा। मेरे मित्रों, आज हम कह सकते हैं कि आपके पाप के लिए दो में से एक स्थान है, आप पर या प्रभु यीशु पर। यदि आपने प्रभु यीशु के बलिदान को ग्रहण नहीं किया है, यदि आप उस पर अपने मुक्तिदाता होने का विश्वास नहीं करते हैं, तो आपके भविष्य में श्वेत सिंहासन के सामने न्याय की अपेक्षा और कुछ नहीं है। वहां उपस्थित जनों में से एक का भी उद्धार नहीं होगा, परंतु हाँ, उन्हें अपने कर्मों की दुहाई देने का उचित अवसर दिया जाएगा और वे देखेंगे कि परमेश्वर सदा सही था। अब यदि आज आप पाप के बोझ से दबे हैं, तो प्रभु यीशु की मृत्यु की अपेक्षा आपके पाप मोचन का अन्य कोई समाधान नहीं है। जी हाँ, जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएगा, तब वह उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा, अर्थात उस समय वह मनुष्य के उद्धार को पूरा करेगा। हमारा उद्धार समय के तीन कालों में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बचाया गया हूं, मैं बचाया जा रहा हूं, मैं बचाया जाऊंगा। यूहन्ना लिखता है 1 यूहन्ना 3:2 में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। वह दिन वास्तव में एक महान दिन होगा। परमेश्वर ने हमारे साथ व्यवहार समाप्त नहीं किया है। मेरे मित्रों, एक बार एक महिला सभा में गवाही देने के लिए खड़ी हुई। उसने कहा, विश्वासियों को अपने पीठ पर लिख लेना चाहिए, अब तक जो हुआ है वह परमेश्वर के अनुग्रह का सर्वोत्तम नहीं है। जी हाँ, यह बात सब विश्वासियों की पीठ पर लिखी जानी चाहिए या लिखा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर का व्यवहार हमारे साथ पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह फिर प्रकट होगा, परंतु उद्धार के लिए बिना पाप उठाए दिखाई देगा। वह हमें मुक्त करेगा, परंतु मेरे मित्रों, वह पाप मोचन के लिए नहीं आएगा। जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया है उनका वह न्याय करेगा। इसलिए आज ही उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। अभी आपके पास में मौका है। यदि आपने कोई पाप किया है, यदि पापमय जीवन जी रहे हैं, तो अवसर है कि प्रभु यीशु के पास आएं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, उससे क्षमा मांगें और अपने जीवन में उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। क्योंकि जब वह दूसरी बार आएगा तो वह आपका उद्धार करने के लिए नहीं आएगा, वह दोबारे मरने के लिए नहीं आएगा, परंतु वह न्याय करेगा। तो मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं या नहीं, लेकिन आप इस बात को जान लें कि वह न्याय करने के लिए आएगा और तब तक समय काफी निकल चुका होगा। तो आइए आज हम उस महान परमेश्वर के पास आएं जिसने हम सारे मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि उसके उस पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो सके। क्योंकि हमने पढ़ा है, न तो बैलों का और न बकरों का लहू हमें क्षमा दिला सकता है। मेरे प्रियो, उस पवित्र लहू को सिर्फ परमेश्वर ही प्रबंध कर सकता है, और यही कारण है कि उसने यीशु को इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा, ताकि हम सब उसके बलिदान के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में उस महान उद्धारकर्ता के बारे में जाना है और आप अपने जीवन के लिए एक सही और उत्तम निर्णय लेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मुझ में
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं।